फ्रेंड्स, जीएसटी में रिफंड के संबंध में एक बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है, जिसके संबंध में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उससे किस किस को फ़ायदा होने वाला है और कितना फ़ायदा होगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसी के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी, वो ये कि हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, www.taxdkp.com पे। ये आपके सामने वेबसाइट हमारी खुली हुई है, इस पे हमने एक जीएसटी का कैलेंडर भी अपलोड किया है, जो जीएसटी की 2023 से संबंधित सभी डेट्स को बताता है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप यहाँ स्क्रॉल करके अगर नीचे आएंगे तो ये जीएसटी का कैलेंडर दिया हुआ है। यहाँ पर आप रीड मोर में क्लिक करेंगे तो ये आपका जीएसटी कैलेंडर आ जाएगा, और यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी डेट्स दी गई हैं जीएसटी के संबंध में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की 2023 की। ये जैसे कि जनवरी 2023 की डेट्स दी हुई हैं, रेड कर इनको हाईलाइट किया गया रेड से, और नीचे आपको डेट्स दी गई कि कौन सी किसकी डेट्स हैं। इस तरह से आप सभी महीनों की डेट्स को यहां पर आकर के देख सकते हैं, और चाहें तो यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, तो आपको जीएसटी से संबंधित सारी ड्यू डेट्स 2023 की मिल जाएंगी। तो इसी के साथ साथ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जीएसटी रिफंड के संबंध में है वो क्या चीज़ें हैं। देखिए, अभी एक सर्कुलर इशू हुआ है, उस सर्कुलर में ये बताया गया है कि जीएसटी रिफंड की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। प्रिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाई अनरजिस्टर्ड पर्संस। तो इसमें एक दिक्कत तो ये थी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे उनको अभी तक रिफंड नहीं मिल पाता था, तो उनकी समस्या का समाधान किया गया। वो कौन से लोग थे जिनको रिफंड नहीं मिल पाता था, तो इसके बारे में उन्होंने बताया, इंस्टेंस हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस वेयर द अनरजिस्टर्ड बायर्स हु हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट विद अ बिल्डर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स बिल्डिंग ETC एंड हैड पेड द अमाउंट टूवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस आइदर फुल्ली और पार्शियली along with applicable tax had to get the said contract agreement cancelled subsequently due to non-completion or delay in construction activity in time or any other reason। तो किसी भी कारण से इन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना शुरू किया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और उसके द्वारा जो राशि दी गई है उस पे जीएसटी कट चुका है, वो उनको रिफंड नहीं मिल पाता था, तो अब उनको रिफंड मिल पाएगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। इन ए नंबर ऑफ सच केसेज द पीरियड फॉर इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सच कैंसिलेशन ऑफ सर्विस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इसमें उन्होंने बताया, मे ऑलरेडी हैव गॉट एक्सपायर्ड बाई द टाइम, इन सच केसेज द सप्लायर मे रिफंड द अमाउंट टू द बायर आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाई हिम फ्राम द बायर। तो जो उन्होंने आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया है उसका रिफंड आपको चाहिए, क्योंकि आपका तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो गया है, अब आगे आपको काम उसका नहीं करना है। सिमिलर सिचुएशन में अराइज इन केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। जो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी उसमें भी सेम सिचुएशन होती थी क्या, वेयर प्रीमियम फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ टर्म ऑफ पॉलिसीज पेड अप फ्रंट along with applicable GST and the policy subsequently required to be terminated permanently due to some reason। किसी कारण से उन्होंने क्या किया कि पॉलिसी का सारा पैसा और GST एक साथ जमा कर दिया, लेकिन किसी कारण से अगर पॉलिसी टर्मिनेट हो गई तो फिर उनका GST का जो पैसा था वो रिफंड हो सकता था, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा था, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया, हैव ऑलरेडी एक्सपायर्ड एंड देयरफॉर द इंश्योरेंस कंपनीज में रिफंड ओनली द प्रोपोर्शनल प्रीमियम नेट ऑफ GST। तो यानी प्रोपोर्शनेट ढंग से होगा, यानी अगर आपका जितना टाइम तक वो पॉलिसी चल चुकी है उतने टाइम तक का आपका GST डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद का अमाउंट ही आपका रिफंड हो पाएगा। representation have been received requesting for providing a facility to such unregistered buyers recipient for claiming refund of amount of tax borne by them in the event of cancellation of the contract agreement for supply of services of construction of flat public building or on termination of long term insurance policy. तो बहुत सारे इनको रिप्रेजेंटेशंस मिले थे जो कि इस तरह के थे कि कॉन्ट्रैक्ट उनका टर्मिनेट हो गया है या इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी टर्मिनेट हो गई है। तो इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया कि कैसे कैसे आप उसका रिफंड ले पाएंगे। अब देखिए इन्होंने कब तक आप एप्लीकेशन दे पाएंगे, बाई मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टू ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फर्दर इन टर्म्स ऑफ क्लास ई ऑफ सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ द CGST एक्ट। In case where the unregistered person have borne the incident of tax and not passed on the same to any other person, the said refund shall be paid to him instead of being credited to consumer welfare fund. यानी वो ही refund हो पाएगा amount जो किसी और को pass on अभी तक नहीं किया गया है। File application के संबंध में देख लीजिए, in order to enable such unregistered person to file application for refund under subsection 1 of section 54 in case where the contract public agreement for supply of services of construction of flat building has been cancelled or where long term insurance policy has been terminated. A new functionality has been made available on the common portal which allows unregistered person to take a temporary registration and apply for refund. अब यहाँ पर क्या है कि उसके लिए एक फंक्शनलिटी अलग से पोर्टल पर दी जाएगी और जिसमें से वो तभी अलाउ करेगी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको एक टेम्परेरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा फॉर रिफंड अंडर द कैटेगरी रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। उसके लिए अलग से कैटेगरी होगी जिस पर उसको भरना होगा फॉर्म, यानी रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। फर्दर सब रूल 2 ऑफ रूल 89 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 has been amended and statement 8 has been inserted in form GST RFD 01। तो ये इसमें insert किया जाएगा और documents provide करने हैं वो बताए जाएंगे कि ये documents आपको देने हैं इसके साथ। इसके बाद filing of refund application के बारे में इन्होंने बताया है तो portal पर उपलब्ध होगा और उसके आधार पर इसको किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें आधार authentication भी आपको करना होगा। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि द एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म GST RFD 01 ऑन द कॉमन पोर्टल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो किस पर आपको वो फाइल करना है, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले पे, और तभी आपको रिफंड मिल पाएगा। अब इन्होंने एक चीज और बताई वो भी ध्यान से देख लीजिए, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैव टू बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज इश्यूड बाय डिफरेंट सप्लायर्स। यानी अगर कई सप्लायर आपके हैं उनके द्वारा आपका है तो हर एक के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको रिफंड की फाइल करनी होगी। फर्दर वेयर द सप्लायर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज इनवॉइसेस रिफंड इज टू बी क्लेम आर रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स द एप्लीकेंट शैल ऑब्टेन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इन द ईच ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके अलग अलग स्टेट्स के हैं तो उन अलग अलग स्टेट्स के लिए आपको टेम्परेरी GST नंबर भी अलग अलग लेना होगा। वेयर द टाइम पीरियड फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट अंडर, जब क्रेडिट नोट का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आप रिफंड की एप्लीकेशन देंगे। रेलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड, तो रेलेवेंट डेट क्या होगी, रेलेवेंट डेट वही होगी जिस डेट को आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हुआ है उसी से 2 साल आपके काउंट किए जाएंगे। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर सप्लाई बाय द सप्लायर विल बी कंसीडर्ड एज द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द सर्विसेज बाय द एप्लीकेंट। तो यहीं से आपके 2 साल का टाइम काउंट कर लिया जाएगा। अच्छा, किसका रिफंड मिलेगा, किस अमाउंट का नहीं मिलेगा, तो इन्होंने ये भी बता दिया मिनिमम रिफंड अमाउंट क्या होगा, लेस देन 1000 रुपीज़, यानी 1000 से कम का अगर आपका रिफंड है तो वो आपको नहीं दिया जाएगा, उसका क्लेम नहीं हो सकेगा। अब इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर इसको स्क्रूटनाइज भी करेगा, इसको पूरी तरह से चेक भी करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी को ही देखेगा, उसके बाद ही रिफंड को सेंक्शन करेगा। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है, इनकेस वेयर द अमाउंट पेड बैक बाय द सप्लायर टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज लेस देन अमाउंट पेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द सप्लायर ओनली द प्रोपोनेट अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इन सच अमाउंट पेड बैक शैल बी रिफंडेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो जो पहले पेड किया जा चुका है उसको डिडक्ट करने के बाद ही जो उसके एवरेज में होगा तो उसी को रिफ़ंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कैसे आप अपना रिफ़ंड ले पाएंगे। तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिनको अभी तक ये रिफ़ंड प्राप्त नहीं होता था उनको भी अब रिफ़ंड मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। GSTR 1 में बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है, उसकी टेबल्स में चेंज किया गया है और टेबल्स बढ़ाई भी गई हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी टेबल्स में क्या क्या चीज़ें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि GSTR 1 अब पहले की तरह नहीं रहेगा। अब GSTR 1 जब हम फाइल करेंगे तो उनमें हमें टेबल्स का ध्यान रखना ज़रूरी होगा, अदरवाइज हमें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि GSTR 1 से ही GSTR 3 भी बनता है, तो GSTR 1 में अगर हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हमारे GSTR 3 में भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं GSTR 1 के संबंध में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। उससे पहले आप ये देखें कि एक मेरी वेबसाइट भी है www.taxdkp.com, इस पर आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। इस पर हमने एक GST का कैलेंडर बनाया है जो कि पूरे वर्ष के लिए है, यानी वर्ष 2023 के लिए, जिसमें सारी GST की ड्यू डेट्स कवर की गई हैं, जिनको आप यहां पर देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये है आपका GST का कैलेंडर और यहां पर आकर के आप इसको रीड मोर में आकर के इस कैलेंडर को देख सकते हैं और इसको यहां पर क्लिक हियर पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के आप इस कैलेंडर को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 2023 से संबंधित हमने सभी GST की डेट्स को कवर किया है। जैसे कि ये आपका है जनवरी का कैलेंडर और जनवरी में हमने सारी डेट्स कवर की हैं। रेड कलर से जो डेट्स हैं ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपकी सारी की सारी GST की डेट्स हैं और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे इम्पॉर्टेंट डेट्स में दी गई है। तो इसी तरह से आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप विजिट करें और यहां से इस कैलेंडर को आप आकर के ये डाउनलोड सेक्शन से यहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना सेव कर सकते हैं। तो पूरे वर्ष की ड्यू डेट्स आपको GST कैलेंडर में मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं GSTR 1 की। देखिए GSTR 1 में इतना सारा चेंज किया गया है जो अभी नया नोटिफिकेशन आया उसमें, और उसमें ये जो बताया गया है उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। फॉर्म GSTR 1 जिसमें ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है, मंथ की जगह टैक्स पीरियड कर दिया गया है और इसी तरह से ये टेबल्स चेंज किए गए। तो सीधे सीधे हम लोग टेबल्स में आते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 7A की, इंट्रा स्टेट सप्लाईज कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटपुट सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। तो इसमें यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई लेनी है और 7B में इंटर स्टेट सप्लाई लेनी है। वेयर इनवाइस वैल्यू इज अप टू 2.5 लैक्स, रेट वाइज कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटपुट सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा। आगे हम बात करते हैं टेबल्स की, जिसमें टेबल नंबर 14 बहुत महत्वपूर्ण है। टेबल नंबर 14 में इन्होंने क्या बताया है, डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट और लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि ये इस टेबल में हमें वो फिगर्स भरनी हैं जिस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स चार्ज करना है, चाहे वो टैक्स के लिए लायबल हो या वो सेक्शन 52 में कलेक्ट करने के लिए या पे करने के लिए लायबल हो अंडर सेक्शन 95। तो केवल हमें फिगर्स वही वाली भरनी है जिसके लिए टैक्स की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जा रही है। भरनी किसको है, देखिए सप्लायर टू रिपोर्ट, यहां पर जो सप्लायर है उसको रिपोर्ट करना है। अगर हम ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हमसे ये टेबल भरने में गलती नहीं होगी। पहली चीज़ ये है कि इसमें लायबिलिटी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आ रही है, चाहे वो आ रही हो TCS की, चाहे उसके ऊपर लायबिलिटी आ रही हो सेक्शन 9(5) के कारण, लायबिलिटी आ रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, तो वो फिगर लेनी है। और यहाँ पर फिगरें भरनी किसको हैं? सप्लायर को, ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं भरनी है, यहाँ पर भरनी है सप्लायर को। दो चीज़ें हैं, सप्लायर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, तो आप यहाँ पर भरेंगे, और सप्लायर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). 52 की हैं तो इसमें भरेंगे ए में, और 9(5) की हैं तो बी में फिल करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग टेबल नंबर 14A में, इसमें क्या है, अमेंडमेंट है जो हमने टेबल 14 में फिल करी थी, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट है तो हम उसको लेंगे टेबल नंबर 14A में। इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए अमेंडमेंट है, सारा कुछ सारा वही है जो टेबल 14 में है, टेबल 14A में आकर के केवल उससे अमेंडमेंट की बात कर रहा है, और सारी फिगर्स उसी तरह से लेनी है, जैसे कि अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट और लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). भरनी किसको? सप्लायर टू रिपोर्ट, ये भी सप्लायर के लिए, यानी टेबल नंबर 14 और 14A भरनी किसको? सप्लायर को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेबल नंबर 15 की। 15 में देखिए क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट, यहाँ पर जो फिगर्स भरनी हैं वो भरनी है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, यहाँ पर सप्लायर को नहीं भरनी है, किसको भरनी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को भरनी है। और किसकी भरनी है? जो सप्लायर है जिसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी चीज़ों को बेचा है, उसकी जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गई है वो यहाँ पर भरी जाएगी। और ई कॉमर्स ऑपरेटर ये देखेगा कि जिससे उसने सप्लाई ली है वो रजिस्टर्ड था या अनरजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड था तो उसकी फिगर इसमें भरी जाएंगी, और अनरजिस्टर्ड था तो उसकी फिगर इसमें भरी जाएंगी। उसके बाद वो ये सप्लायर की रिपोर्ट हो गई, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाइप ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड ये देखना है, फिर देखना टाइप ऑफ रिसिपियंट कैसा है, टाइप ऑफ रिसिपियंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो भी हमें यहाँ पर देख करके इसको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर जब 15A(1) में हम आ जाते हैं तो इस टेबल में आकर के वही सारी फिगर्स का अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर टू लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट फॉर रजिस्टर्ड रिसिपियंट्स, तो इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर किसकी फिगर्स को भरेगा? अगर हमारा रिसिपियंट रजिस्टर्ड है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर उनकी रिपोर्ट करेगा जो रिसिपियंट रजिस्टर्ड हैं, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके लिए है 15A(2) इसमें है अमेंडमेंट, 15A(2) में है अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट फॉर अनरजिस्टर्ड रिसिपियंट्स, तो यहाँ पर उसके अनरजिस्टर्ड रिसिपियंट हैं उनका अमेंडमेंट आएगा, और 15(1A) में अमेंडमेंट उनका आएगा जो रजिस्टर्ड रिसिपियंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 15 में ये दोनों चीज़ें दे दी गई हैं, पहले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सप्लायर, और फिर दे दिया टाइप ऑफ रिसिपियंट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ पर सप्लाई के बारे में भरना है और यहाँ पर उसके अमेंडमेंट के बारे में भरना है 15A(1) में, लेकिन ये रजिस्टर्ड रिसिपियंट्स के लिए भरना है, और 15A(2) में अनरजिस्टर्ड रिसिपियंट्स के लिए भरना है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें टेबल्स की क्लियर कर दी हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं इंस्ट्रक्शंस में जो खास बात है केवल मैं उतना ही कवर करने वाला हूँ। इसमें इन्होंने दिया 4 ML सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS अंडर सेक्शन 52। तो ये तो आपको अंडर सेक्शन 52 की जो TCS वाली लाइबिलिटी वो तो लेनी है, बट एक्सक्लूड क्या करना है ये ध्यान रखना है, बट एक्सक्लूडिंग सप्लाई अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस शैल बी रिपोर्टेड। तो रिवर्स चार्ज जिस पे लग रहा है उसकी फिगर आपको यहाँ पर नहीं लेनी है, और जिस पर रिवर्स चार्ज नहीं वो सारी की सारी और TCS वाली मिला करके यहाँ पर आपको ले लेनी है। यहाँ सेकंड में बता रहा है सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 95 फॉर विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स शैल नॉट बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। तो यहाँ पर वो वाली भी फिगर नहीं लेनी ई कॉमर्स ऑपरेटर की, उसके लिए आपको टेबल्स अलग से दी गई है। 4B में भी इन्होंने कह दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स एंड नॉट बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल, उसको भी नहीं लेना है। और इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन हैविंग इनवॉइस वैल्यू मोर देन ₹2.50 लाख शैल बी रिपोर्टेड, वो फिगर आपको यहाँ पर लेनी है इंटर स्टेट में 2.5 लाख से अधिक के जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई आपने की है। इसके अलावा टेबल नंबर 7 थोड़ा सा और देख लीजिए, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दूध रिपोर्टेड इन टेबल 5 शैल बी रिपोर्टेड वैल्यू शैल बी नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। तो यहाँ पर नेट ऑफ लेनी है आपको डेबिट नोट क्रेडिट घटा करके टेबल नंबर 7 में। और खास बात है सबसे ज़्यादा जो वो है टेबल नंबर 8 में। टेबल नंबर 8 में वो कह रहा है सप्लाईज हैविंग नो टैक्स लाइबिलिटी यानी निल रेटेड एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST सप्लाईज शैल बी रिपोर्टेड सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 शैल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज ऑफ सप्लायर्स। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एग्जेम्प्टेड में उसको ऐड करके डाल दे रहे थे, तो अब वो गलती नहीं करनी है, उसके लिए टेबल अलग से आ गई हैं, उसी हिसाब से उसको भरना है। तो मेरा ख्याल है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।